हाँ तो हम असुरों के विषय में पढ़ रहे हैं। वो क्या कहते हैं, असौ माया हतः शत्रु हनिष्ये चा परानपि, कि मेरा शत्रु था इसलिए मर गया। और आगे कहता है, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्ध्यो हम भलवान सुखी, कि ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ही ईश्वर हूँ। ईश्वर का क्या मतलब पता है? ईश्वर का मतलब पालने वाला हूँ। ये जो घर है, ये जो मेरे बच्चे, मेरा सारा परिवार, मैं नहीं होता, मैं एक दिन नहीं हूं तो ये पूरा सिस्टम बिगड़ जाए। यानी कि जिसके मन में ये होता है कि मेरे अतिरिक्त और है कोई, है कौन इन सबका केयर करने वाला, वहां पर ये मंदिर में कार्य नहीं हो रहा है, वहां पर भी मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ, वहां पर भी। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं हमें कि कोई नहीं है, मुझे अकेले आना पड़ता है, जाना पड़ता है, मैं ही करता हूँ सारा कार्य, कोई भी नहीं है। शुक्र मैं हूँ, वरना तो कौन संभालता। तो जो ऐसा कहता है कि मैं करने वाला हूँ, वो कहता है ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम भल, कि मैं सिद्ध हूँ। सिद्ध हूँ यानी कि मैंने अपनी योजनाओं से सबको बेवकूफ बना रखा है, सब ज्यादा से ज्यादा बेवकूफ बनाता हूँ और ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करता हूँ। ये है आज की सिद्धता, आज के जीवन की, असुरों की। सिद्धो हम भलवान सुखी, कि मैं बहुत ज्यादा भलवान हूँ और मैं ही सुखी हूँ। आर्यो भी जनवानस्मि कौन्योस्ति सदृशो मया, कि मेरे आसपास इतने ज्यादा, मैंने कि मेरी पहुंच दूर दूर तक है, बड़े बड़े लोग मेरे साथ हैं, और जितना मैं सुखी हूँ, मेरे जितना सुखी कौन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा तो कोई और है ही नहीं। यक्षी दास्यामि मोदिश्य इत्यज्ञान विमोहित, यानी कि हम, वो इतना ज्यादा मोहित होते हैं असुर कि वो शुभ कार्य भी करते हैं तो केवल घमंड के लिए, मैं यज्ञ करूंगा, यक्षी राश्या दास्यामी, और मोदिता मैं ही, यानी कि दान भी मैं दूंगा। मोदिश्य का मतलब होता है आमोद प्रमोद मनाऊंगा, मजाक करूंगा, और एक अज्ञान विमोहिता, इस तरह से वो इतना अज्ञान में होता है, उसको पता ही नहीं है कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, तो केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। विमोदिश्य यानी कि वो जो भी कार्य करता है उसका केंद्र क्या होता है, वो स्वयं पर केंद्रित करता है कि मुझे इससे प्रसन्नता हो इसलिए मैं कार्य करता हूँ, और इस अज्ञान विमोहिता, क्योंकि ये बहुत बड़ा अज्ञान है। जीव का कोई भी कार्य स्वयं को प्रसन्न करने के लिए यदि होता है तो वो अज्ञानता है, और यदि जीव सोचता है कि मैं इस कार्य से कृष्ण को प्रसन्न करूंगा तो कृष्ण की कृपा से जीव प्रसन्न होता है। जीव कृष्ण का अंश है, वो स्वतः प्रसन्न नहीं हो सकता। और आगे कहते हैं, अनेक चित विभ्रांता मोह जाला समावृता, इस तरह क्या होता है, उसका चित्त अनेक दिशाओं में उलझा हुआ होता है, बहुत 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 सारी चिंताएं होती हैं, क्योंकि उसको पता है मुझे ही करना है, मेरे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं करने वाला, तो मोह जाल में बंद कर बहुत बहुत चिंताओं में उसका चित्त जो है वो कभी भी एकत्रित नहीं होता। फिर पता है क्या होता, भगवान कहते हैं बहुशाखा ही अनंतास्य, जिसकी बुद्धि बहुत बहुत शाखाओं में, मतलब स्थिर नहीं है ना, उसको पता नहीं है कि अगर मेरा पतन हो रहा है या मुझे यदि कष्ट है तो मुझे किधर जाना चाहिए। ये असुर लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको पता ही नहीं है, उनको लगता है कि हम ही करने वाले हैं, उनको पता नहीं किधर जाना है, तो फिर क्या हो जाता है। अंत लाइन 16 श्लोक चैप्टर 16 टेक्स्ट नंबर 16 की अंतिम लाइन, कि वो उनका होगा क्या जो ये ऐसा कर रहे हैं। अब हमें ये सोचना है कि इनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज हमारे अंदर है, क्या हम सोचते हैं कि बलवान है, क्या हम सोचते हैं कि ये सब मैंने अपनी इच्छा से प्राप्त किया है और अपने बलबूते पर प्राप्त किया है और मैं ही सब कार्य करने वाला हूँ। कहीं ना कहीं ये अहंकार भाव हम सबके अंदर है, और सबसे बड़ा जो विपत्ति है वो क्या है, अज्ञानता है। इत्यज्ञान विमोहित, अज्ञानता हो जाएगी फिर सारे कार्य करेंगे हम, ये सारे असुरों वाले कार्य करेंगे, और चित्त विभ्रांत होगा यानी बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो क्या होगा, प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरक नरकेषु चेत्। फिर जब वो इस तरह से इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाता है, फिर उसको लक्ष्य इंद्रिय भोग लगता है, इंद्रिय तृप्ति ही उसको अपने जीवन का लक्ष्य लगता है, फिर क्या होता है, पतंती नरकेषु च, कि वो फिर कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा, और उसके लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जब जीव जब तक इसके अंदर ये अज्ञानता है कि मैं स्वयं को इंद्रिय तृप्ति करने के बाद ही संतुष्ट होऊंगा, तो उसका लक्ष्य नरक है, वो डेफिनेटली नरक में जाएगा, क्योंकि ऐसे जब इंद्रिय तृप्ति करते 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 उसके अंदर अपराध भाव आएगा ही आएगा, और फिर वो नरक में लेकर जाएगा। इसे भगवान कहते हैं बहुशाखायनन्तस्य बुद्धयो अव्यवसायिनः, कि जो जिनकी बुद्धि जो है वो एकनिष्ठ नहीं है, एक जगह पर स्थिर नहीं है, तो फिर क्या होता है, पतन्ति नरकेषु, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, तो उसको यही खबर है कि मुझे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी इधर जाना है, ये चाहिए तो मैं उससे प्राप्त करूं, ये चाहिए तो मैं उससे प्राप्त करूं, इस तरह से करते करते और जब भोग्य सामग्री इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो भक्ति करना छोड़ देता है, फिर उसको क्या लगता है कि मेरी सामग्री जो मुझे चाहिए थी वो तो हो, मेरा तो प्लानिंग कंप्लीट हो गई, अब मैं ही सुखी हूँ, तो फिर अपराध भाव हो जाता है। लेकिन जब जीव अपने आप को दास समझता है कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुझे कार्य करना है, तो क्या होता है, फिर भगवान की शरण में होता है वो, फिर उसे अपराध यदि हो भी जाता है, कोई भक्त से यदि अपराध हो जाता है तो भी भगवान क्या कहते हैं, साधु रेव समन्तव्य, कोई भगवान के पास जाकर यदि वो अपने भगवान को शरणागति होता है तो फिर भगवान क्या कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं बैठा हूं ना, मैं तुम्हारे समस्त अपराधों को क्षमा कर दूंगा, भगवान को सामर्थ्य है, भगवान कर सकते हैं। जब ये ना भक्त भगवान की शरण में जाता है तब तो भगवान उसके सारे अपराध क्षमा कर ही देते हैं, लेकिन जब ये असुर भी जाते हैं ना, अगर कोई असुर भी जाए ना, तो भगवान डेफिनेटली उसके अपराध सारे क्षमा करेंगे। क्योंकि एक बार भी क्या हुआ, जब विभीषण आए थे ना श्री राम के दल में, और तब सब लोग कह रहे थे कि देखो प्रभु आप इसको स्वीकार नहीं करना, क्योंकि ये शत्रु दल का है और ये इसलिए आ रहा है ताकि हमारे जो दल की जो प्लानिंग्स हैं वो सब उनको इन्फॉर्म करेगा, फिर हमारी सारी प्लानिंग चौपट करेंगे, ये असुर है इन पर भरोसा मत करो। लेकिन श्री राम ने जानते हो क्या कहा, बोला ये तो विभीषण है और मैं जानता हूँ, यानी कि पहले से हनुमान जी ने बताया था उनके विषय में, और मैं जानता हूँ कि ये असुरों में देव है, असुरों में सुर आके यहाँ पर जन्म लिया है, और ये भले किसी भी योजना से आ रहा है लेकिन मेरी शरण में है ना, ये तो विभीषण है, अगर रावण भी आएगा ना तो जाके बोल दो उसको कि यदि तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। ये भगवान की भक्त वत्सलता है कि वो हमारे दोष को नहीं देखते, केवल हमारे सरेंडर को देखते हैं, और जीव इतना अभागा है कि भगवान को सरेंडर भी नहीं कर पाता। तो जब भी देवताओं पर कष्ट आता है तो वो सारा अपनी प्रॉब्लम्स का भंडार लेकर जाते हैं भगवान विष्णु के पास और बोलते ये प्रॉब्लम हो गई अब आप सहायता करो। तो जब असुरों ने राज्य छीन लिया इंद्र का, तो इंद्र जो है वो सारी देवताओं की सेना को लेकर भगवान के पास गए, तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, अब ये ना ये जो समय चल रहा है ना उसमें आप लोग है ना लड़ाई मत करो, क्योंकि अगर आप लोग असुरों के साथ लड़ाई करोगे तो इस समय में आपका जीत नहीं सकोगे, क्योंकि कभी कभी समय ऐसा होता है ना, ग्रह लक्षण ये सब भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं, तो भगवान को कहा फिर हम करें क्या, क्योंकि भगवान ने कहा देखो अभी अगर आप लड़ाई करोगे तो जो असुर है उनके गुरु कौन है, शुक्राचार्य, उनको संजीवनी विद्या आती है, और वो क्या करते हैं उस साइड पे जो भी मरेगा तो उसको वो क्या करेंगे, जीवित कर देंगे, और आप लोग के पास ये संजीवनी विद्या भी नहीं है और आपके गुरु बृहस्पति को भी नहीं आती है, तो कोई ऐसा तरीका हो ना कि जब आपके भी साइड के लोग अगर मरे, देवता भी अगर मर जाए युद्ध में, तो आपके पास भी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि वो जिंदा हो जाए या वो मर ना सके। तो फिर देवताओं ने कहा ऐसी क्या बात हो सकती है, ऐसा क्या ऐसा हो सकता है कि हम मरे नहीं, तो भगवान ने कहा अगर आप अमृत पियोगे ना तो अमृत पीने वाला कभी भी नहीं मरता है, तो ये वैसे ये भी है ना ऑप्शनल, यहाँ तक ये देवता अमर नहीं होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कभी भी नहीं मरेंगे, लेकिन युद्ध में नहीं मरेंगे वो, मतलब अकाल मृत्यु नहीं होगी, जब बहुत बहुत जब उनके देवताओं का 100 वर्ष पूर्ण होगा तब उनकी एंड होगा. ऐसा नहीं कि कभी भगवान कहते हैं 8.16 में आब्रह्म भुवनालोका पुनरावृति नो अर्जुन, तो एक समय ऐसा आता है कि देवता भी समाप्त हो जाते लेकिन ये युद्ध में नहीं मरेंगे क्योंकि वो अमर अमर अमृत पियेंगे ना, तो इस तरह से ये अमर हो जाएंगे. ये भी टेम्पररी अमर होना होता है. तो भगवान से देवताओं ने कहा फिर ये अमृत प्राप्त कहाँ से करेंगे, तो भगवान ने कहा कि अमृत तो समुद्र में है तो आप समुद्र मंथन करो. तो देवताओं ने कहा मंथन समुद्र का, ये कोई दही है मटका है कुआ है जिसको हम बुलाएंगे इस तरह से मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा. इतने बड़े समुद्र को मंथन करने के लिए कितना बड़ा मथानी चाहिए होगा, वो किधर जाएगा. तो भगवान ने कहा कि ऐसा करते हैं मंदराचल को मथानी बनाते हैं. वो मंदराचल बहुत 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 बड़ा पर्वत है तो इसको हम सेंटर में रख के इसको मथानी. तो फिर देवताओं ने कहा फिर डोरी, डोरी को क्या होगी फिर, तो इतनी बड़ी डोरी भी तो चाहिए ना बहुत बड़ी. तो भगवान ने कहा वासुकी को बनाते हैं डोरी और फिर इसको हम समुद्र को मंथन करते हैं. तो देवता ने कहा चलो ठीक है हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं. तो बोला पहले तुम जाओ महाराजा बलि के पास और उनसे कहो कि हम लड़ाई करना नहीं चाहते, हम है ना समुद्र मंथन करेंगे और इससे बहुत बहुत चीजें मिलेंगी, फिर हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो भगवान ने फिर ना देवताओं ने कहा कि फिर तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर अमृत भी उनको देना पड़ेगा. तो भगवान ने कहा नहीं ऐसा नहीं करेंगे, आप अमृत तो निकालो फिर मैं कुछ ना कुछ योजना बना के अमृत खाली देवताओं को ही पिलाऊंगा असुरों को नहीं पिलाऊंगा. तो फिर है ना इस तरह से भगवान ने उनको कहा. देवता बहुत खुश हुए लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न तो उठता ही है कि देवता और असुर और सुर मिलकर मंथन कर रहे हैं और मंथन करने के बाद जो भी चीजें उनको आधा आधा करना चाहिए है ना. भगवान कहते हैं समूहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, तो भगवान कहते हैं कि सबके साथ समान हो, भले वो असुर हैं लेकिन भगवान के ही तो हैं, बच्चे तो भगवान के ही हैं. असुर भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, हर चीज के बीच कृष्ण है, वो हर चीज के पिता है. तो फिर भगवान ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि देवताओं का पक्षपात कर रहे हैं. भगवान कहते हैं ना मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूँ, न मैं द्वेषोस्ती न प्रिय, तो ये तो कोरा कोरा पक्षपात है कि उनको अमृत मिल रहा है और उनको नहीं मिल रहा है. तो इसका उत्तर ही भगवान कहते हैं ये भजन ते तुमाम भक्त्या, जो प्रेम से मेरा भजन करेंगे मई ते देशो से आप हम, जो मेरे से कि अब जैसे पिता होते हैं उसकी संपत्ति का अधिकार सारे पुत्रों को होता है, फिर पिता क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तीन हिस्से बनाते हैं. मतलब अगर दो बेटे हैं और एक पिताजी है तो तीन हिस्से बता कि ये हिस्सा मेरा ये आपका और ये आपका, ठीक है तीन हिस्से इक्वल बना दिए. लेकिन फिर जो बहुत सेवा करता है ना भगवान अपने पिता की, तो पिता क्या करते हैं उस बेटे को अपना हिस्सा भी दे देते हैं कि मेरा है लेकिन तुम रखो क्योंकि मैं क्या करूंगा, आप ही तो हो मेरी सहायता करते हो हमेशा मेरा साथ देते हो तो ये मेरा वाला हिस्सा भी आप रख दो. तो ये पक्षपात नहीं है स्नेह है, क्योंकि वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, वो मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहा है तो उसको मैंने उसका हिस्सा दिया. तो असुरों के लिए भी जो हिस्सा है लेकिन ये जो अमृत है वो तो भगवान की. अब देखेंगे हम भले यहाँ पर ये कह दिया सुत गोस्वामी ने कि मंथन किसने किया समुद्र का सुरासुरानम असुरों और देवताओं ने, लेकिन हम देखेंगे ये पूरा ये जो कार्यक्रम है ना वो केवल और केवल भगवान की योजना से हो रहा है, कुछ भी कार्य नहीं करे. अब भगवान ने क्या कहा है कि आप जाइए और पहले उनको बोला कि पहले जाइए असुरों के साथ संधि कीजिए और उनको बोलिए कि चले. तो फिर गए देवता भगवान के आदेश को सुनकर गए असुरों के पास और महाराजा को कहा, महाराजा बलि को कहा कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, हम ऐसे समुद्र मंथन करना चाहते हैं और उसके बाद इससे बहुत बहुत चीजें जो भी निकलेंगी वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो ऐसे करके उनको मना दिया. फिर बोला चलो फिर हम लोग मंदराचल पर्वत को लेकर आते हैं और उसको हम मंथानी बनाएंगे. मंदराचल पर्वत को जब लेने गए वो इतना भारी 33 करोड़ देवी देवता और इतने सारे असुर मिलकर उसको उठा रहे थे. उठाने के टाइम पर क्या हुआ तो उन्होंने बहुत जोर लगाया, उसको उठाया। अभी नजर आ रहा है ना, आज गोवर्धन भगवान गोवर्धन पर्वत कितना आसानी से, जिस तरह से हाथी अपनी सूंड पर कमल का फूल धारण करता है, उसी तरह से भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया 84 कोस का। और आज ये देवता और असुरगण मिलकर एक पर्वत को उठा रहे हैं, लेकिन उठ ही नहीं रहा। फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने उठाया, और उठा के थोड़ा आगे बढ़े तो उनकी शक्ति क्षीण हो गई, शक्ति समाप्त हो गई, वो आगे बढ़ ही नहीं सके और उनके हाथ से मंदराचल गिर गया। और बहुत सारे देवता और असुर उसके नीचे आकर दबकर मर भी गए। तो फिर है ना, फिर भगवान को जाके प्रार्थना की देवताओं ने कि अब ये इतना भारी है, आप बोलते हो इसको मंदानी बनाओ, हम इसको उठा के समुद्र तक के ला के ही नहीं जा, मतलब उठा इतना भी हम लोग नहीं उठा सक रहे, इतना दूर समुद्र है, यहाँ से हम इसको कैसे लेकर जाए। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, आप लोग छोड़ो मैं करता हूँ। भगवान आए गरुड़ के पास, भगवान ने फौरन से उसको उठाया एक ही हाथ में और जाके समुद्र के तट पे रख दिया। बोला खुश, अभी अभी मैंने रख दिया यहाँ पर, ठीक है अभी आप लोग करो। लेकिन क्योंकि भगवान गरुड़ पे चढ़ के आए थे ना, तो गरुड़ को फौरन से आदेश दिया, क्या बोला, अब तुम यहाँ से निकलो। क्योंकि अभी क्या नेक्स्ट क्या स्टेप था कि मंथानी के ऊपर रस्सी बांधनी थी ना, वो क्या था, वासुकी सांप। और वो जो नाग है वो गरुड़ से बहुत डरते हैं, क्योंकि गरुड़ का भोज्य है ना वो। तो फिर है ना, गरुड़ को बोला तुम अगर यहाँ खड़े रहोगे तो वो सांप आएगा नहीं, तो तुम जाओ यहाँ से। और फिर वासुकी को फौरन से बुला लिया, वो आए और उसको मंथानी किसको बनाया, मंदराचल पर्वत को, और डोरी किसको बनाया, वासुकी को, और उसको रखा समुद्र के अंदर और बोला अभी खींचो। तो भगवान क्या कह रहे कि ना, खुद स्वयं भी देवताओं के पास आ गए। और देवताओं का क्या स्वभाव, असुर, यहाँ पर एक और भी अच्छी बात दिखती है कि जो सुर होते ना, वो हमेशा भगवान के पीछे पीछे चलते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये भगवान क्या कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं देते, बस भगवान ने किया उसके पीछे पीछे चला। तो भगवान ने क्या किया, वासुकी सांप का एक मुख पकड़ लिया। तो अब देवता, वासुकी सांप के बहुत सारे मुख होते हैं, बहुत बहुत मुख होते हैं। तो देवताओं ने देखा भगवान ने एक मुख पकड़ा है, तो फिर बाकी सारे मुखों को उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ा तो फिर है ना, असुर, उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया कि हम यहाँ पर क्यों पकड़ रहे हैं या वो। तो असुरों को बोला कि अभी आप वो वाला साइड पकड़ो, डोम वाला साइड, और इसको अभी हम घुमाएंगे मथानी को, यहाँ पर अभी बहुत अच्छी लीला शुरू होगी समुद्र मंथन की। लेकिन असुर लोग का क्या स्वभाव होता है, जो भगवान ने कहा है ना उसके आदेश के विपरीत जाना है, एनी हाउ भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करना। तो बोला कि नहीं भाई, हम क्यों डोम पकड़े, ये डोम तो अच्छा भाग नहीं है, हम मुख पकड़ेंगे। तो फिर ना ऐसे बोला, तो भगवान ने कहा चलो ठीक है। फिर देवताओं को बोला फिर हम लोग दुम पकड़ लें, तो देवता ने बोला प्रभु आप जो करोगे हम वही करेंगे। किसी एक देवता ने भी ऐसा नहीं कहा कि हम पीछे क्यों हटे, हमने पहले पकड़ लिया तो फिर हम है ना पीछे नहीं हट रहे। लेकिन जैसे भगवान ने बोला चलो हम दुम पकड़ते, तो सब दुम की तरफ आ गए। फिर इसके बाद पता चला जब उसको घुमाना शुरू किया, जहां से असुरों ने पकड़ा था ना मुख, वो मुखों से इतनी आग, भयंकर आग निकल रही थी, क्योंकि आप रगड़ रहे थे वासुकी को और उसका पूरे मुख से शोले निकल रहे थे आग के। और देव सारे असुर जो है वो उन शोलों से ही झुलस रहे थे, बहुत सारे असुर उन शोलों से आग के लपटों में आकर झुलस कर मार रहे थे। लेकिन अब हो गया, उन्होंने खुद अपनी चॉइस से लिया था, तो क्या कर सकते। अब क्या हुआ, जैसे ही मंथन स्टार्ट हुआ, तो जे अभी शुरू ही किया था कि मंदराचल पर्वत टिक नहीं रहा था, मतलब फौरन से उसके अंदर ही घिस गया। अब अंदर ही चला गया, समुद्र के अंदर ही चला गया, ऐसे ट्रन होके गिर गया। तो फिर है ना, मतलब ये खड़ा नहीं हो सक रहा था। फिर भगवान को वापस से देवताओं ने कहा कि अब क्या करें, अभी ये तो हो ही नहीं रहा, इतनी मेहनत की हमने, मंदराचल पर्वत को लेकर आया, डोरी बनाया, ये सब किया, देवता असुरों को मनाया, अभी ये तो मंदराचल पर्वत चल ही नहीं रहा है। हालांकि यहाँ पे मेहनत क्या की थी देवताओं ने, कुछ भी तो मेहनत नहीं की। पहले असुरों को मनाने के लिए भगवान ने उनको प्रेरणा दी, उसके बाद मंदराचल पर्वत को भी खुद लेकर आए, वासुकी को भी भगवान ने उनकी हेल्प की कि इस तरह से पकड़। लेकिन कर सारा कुछ भगवान ही रहते, लेकिन फिर भी देवताओं ने कहा कि अभी सारी हमारी मेहनत जाया हो गई। जैसे नहीं कोई अगर कारोबार खोलते हैं और सारा वो चौपट हो जाता है, लॉस हो जाता है, ऐसे लग रहा था उनको। लेकिन भगवान ने कहा तुम फिक्र नहीं करो, अभी भगवान ने देखा कि इसकी इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें, तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। ये जो आज का हमारा 11वां एकादश अवतार है ना, गायत्री कम कमठ रूपेण, यानी ये कश्यप का कछुए का रूप भगवान ने धारण किया है, किस लिए? ताकि मंदराचल पर्वत जो है वो टिक सके। लेकिन आपने देखा होगा कच्छप का जो पीठ होता है वो ऐसे स्लॉप की तरह होता है, मतलब सीधा बैलेंस में नहीं होता है ना। लेकिन भगवान ने फिर क्या किया, अंदर कच्छप के रूप में खड़े थे, बैठे हुए थे, और इतना बड़ा यहाँ पर लिखा हुआ ना एक पृष्ठ एकादशो विभू, तो इतना बड़ा। अब देखो आपके माइंड में होगा ना ये कितना बड़ा पहाड़ था जो सारे देवता उठा रहे थे, नहीं उठा सक रहे थे, तो इतना बड़ा पहाड़ रखने के लिए छोटा सा कछुआ तो नहीं चाहिए होगा। बहुत बड़ा कछुआ, विभू विभू मतलब बहुत बहुत बड़ा कछुआ का रूप भगवान ने लिया। और भगवान क्योंकि अब वो भी ऐसे कच्छे की पीठ ऐसे होती है ना, लेकिन फिर भी भगवान अंदर एक और अवतार लेकर खड़े थे जिसका नाम था अजित। अजित अवतार से भगवान ने उसको बैलेंस किया पीठ को, और फिर भगवान ने उनको देवताओं को और असुरों को आदेश दिया कि आप दोनों अब करो, अब ना आप जब मंथानी को ऐसे मंथानी करोगे ना, मंथन करोगे तो ये बैलेंस रहेगा और समुद्र जो है वो गिरेगा नहीं। तो एकदम अच्छे से भगवान ने उनको सुव्यवस्थित तरीके से मंथन स्टार्ट करके दे दिया कि अब आप यहाँ से करो। तो भगवान इतने सुंदर लग रहे थे, ये इतना बड़ा इतना भारी पर्वत जो भगवान के शरीर पर, भगवान की पीठ पर, जो भगवान ये कच्छप का जो पीछे कवच जैसा बना होता है ना उसके ऊपर रख कर ऐसे गोल गोल घूम रहा था, हल्का हल्का घूम रहा था और कभी तेज हो रहा था, तो भगवान को इससे कष्ट नहीं हो रहा था। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कैसे पीठ पे ऐसे से करती है, जब उसको है ना नींद नहीं आ रही होती है, फिर ऐसे सहलाती है प्यार से, ऐसे से करती है, ऐसे कितना अच्छा लगता होगा उसको बच्चे को कि हाँ सुकून आ रहा होता है। या फिर अगर किसी को पीठ पे थोड़ी खुजली होती है, फिर कोई हमको बोल दे ना यहाँ से बहुत खुजली होती है, कोई कर देता है तो कितना अच्छा लगता है। तो भगवान को ऐसे लग रहा था कि मुझे बहुत प्यार से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, समुद्र के अंदर ये पहाड़ जो है वो प्यार से ऐसे भगवान को फैला रहा था, भगवान की पीठ को। भगवान को बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत मजा आ रहा था कृष्ण को इस कच्छप रूप में। तो वे ऐसे करते तो अभी समुद्र लीला ये मैंने अभी तो स्टार्ट हुआ है, आगे बहुत सारे अवतार आएंगे भगवान के, लेकिन ये कच्छप अवतार भगवान का अभी हुआ। और जैसे ही ना समुद्र मंथन स्टार्ट हुआ तो इतना भयानक कि विष निकला, कालकूट विष निकलने वाला था। अभी इतना विष भयानक था कि इसको ना बस अभी आया है खाली, मतलब निकला भी नहीं है, सिर्फ उसके आने का समाचार ही हुआ। जैसे सूर्य कैसे अभी तक पूरा निकला नहीं होता है, सिर्फ सुबह सुबह थोड़ी रोशनी होती है, इस तरह से खाली विष निकलने का मतलब स्टार्ट हुआ था। तो भी इतना भयंकर वहां का वातावरण हो रहा था कि सब लोग का दम घुट रहा था, सब लोग की सांस फूल रही थी, दम घुट रहा था। तो फिर ना इन्होंने कहा कि अब क्या करें, तो फिर वापिस भगवान के पास गए। तो भगवान ने बोला देवताओं को क्या है, जब कभी मेरे पास आ जाते हो आप अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, इतने सारे देवी देवता आपस में सॉल्यूशन निकालो ना, हर कोई काम के लिए बस मेरे ही सामने आ जाते हो, तो आप लोगों में कोई देवता है देखो, कोई सर्वश्रेष्ठ है उसके पास जाओ, वो भी है ना कुछ तो करे, सब कुछ मैं ही करूँ क्या। तो फिर सबको भगवान ने ऐसे संकेत दिया कि महादेव के पास जाओ, महादेव ही है जो इस विष का पान कर सकते हैं। तो फिर सारे देवता गए महादेव के पास और उनको कहा कि आप वहां पर पार्वती माता भी बैठी हुई थी, और पार्वती माता के सामने सारे देवताओं ने महादेव से ये प्रार्थना की कि आप आइए जहर पीजिए, मतलब कोई पत्नी बैठी हो और कोई उसके पति को या कि कहे थे आइए आज आप हमारे हमारा जहर निकला है वो कौन पिएगा, आप पी लीजिए। तो फिर कितना पत्नी उसी टाइम पर उनको धक्के मार के निकालेगी, तुम लोग माना जाते हो मेरे पति को जहर पिलाना चाहते हो। लेकिन ये पार्वती माता क्योंकि ये भगवान के परम वैष्णव जो परम भक्त हैं उनकी पत्नी है, तो यहाँ पर वैष्णवी पत्नी का एक स्वभाव दिखाया कि जब भी कोई भगवान का भक्त उनसे कोई याचना करने आता है उनके पति से, तो वो कभी भी उनको मना नहीं करती, मतलब हमेशा अपने पति की सहायता करती है भक्त और भगवान की सेवा करने के लिए। तो पार्वती माता ने भी उनको बहुत ही आदर दिया देवताओं को, महादेव को कहा कि आपको इनका कष्ट दूर करने के लिए जाना चाहिए। फिर महादेव आए और फिर उन्होंने विष पिया, लेकिन विष को धारण नहीं किया, मतलब अंदर तक नहीं ग्रहण किया, कंठ में ही रखा। और कंठ में इसलिए रखा क्योंकि महादेव परम वैष्णव है और वैष्णव के हृदय में भगवान होते हैं। ये वैष्णव की बहुत अद्भुत ये लीला होती है कि उसके हृदय में भौतिक कोई इच्छा नहीं होती कि लेकिन कृष्ण प्राप्ति की इच्छा उनके हृदय में इतनी तीव्र होती है कि स्वयं कृष्ण आकर उनके हृदय में विराजमान हो जाते। तो भगवान उनके हृदय में होते तो महादेव ने कहा कि मेरे हृदय में तो कृष्ण है, मेरे भगवान का वास है, तो अगर मैं इसको विष को पूरा पी लूंगा अंदर जाएगा तो मेरे भगवान को कष्ट होगा ना, इसलिए उन्होंने कंठ में रखा और उनके कंठ में निशान हो गया नीले कलर का, इसलिए उनको नीलकंठ कहा गया। तो अब और भी बहुत सारी चीजें निकलेंगी समुद्र मंथन से, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। लक्ष्मी महारानी निकलेगी और सारे असुर सब सोचेंगे कि शायद ही हमारे गले स्वयंवर होगा। अभी यहाँ पर लक्ष्मी महारानी का जहाँ पर है ना, सुर क्या सोचते हैं, को अन्यो सदृशो मया, अभी हम पढ़ रहे थे ना कि मेरे जैसा सुंदर क्या होता है। तो देवताओं को तो पता था कि ये लक्ष्मी महारानी भगवान की है, उन्हीं सब वरमाला पहनाएंगे, लेकिन असुर सब क्या सोचते थे, मुझसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, मेरे पास ही आएगी। तो ऐसे सोचते सोचते, लेकिन फिर भी क्योंकि लक्ष्मी भगवान की चिर संगिनी है, वो भगवान से विवाह करेंगी और इस समुद्र मंथन में और भी बहुत कुछ समय सुनने को मिलेगा। कृपया साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।